તારીખ 25/11/1996 શ્રી ધન્ય આરાધનાની પ્રસ્તાવના ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 3.
કૃપાળ દેવ સુંદર રાજચંદ્રજીની આજે જન્મજયંતિ છે. હજી 130મી જન્મજયંતિ છે આજે. વર્તમાન કાળમાં સર્વજ્ઞ અને એની ગ્રંથ મુનિરાજની ઉપસ્થિતિ નહીં હોવાથી મુમુક્ષુ જીવોને અથવા પરિભ્રમણ કરતા કોઈ પણ જીવને તરવાનું સ્થાન માત્ર એક સત્પુરુષ જ છે. એ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન સામાન્યપણે સમાજમાં નહીં હોવાથી અને ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પણ એ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન નહીં હોવાથી એનું મૂલ્યાંકન વિશેષ થવા અર્થે એમણે મુમુક્ષુઓને એ વિષય ઉપર અદ્ભુત માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને અનેક પડખેથી એ વાતને ઉપસાવી છે અને એનું મૂલ્ય કેવી રીતે છે એમના લખાણોમાં આવ્યું છે. સર્વજ્ઞ કરતા અને પોતાના આત્મા કરતા પણ સર્વજ્ઞ જિનેન્દ્ર દેવ કરતા અને પોતાના આત્મા કરતા પણ
બરાબર
સત્પુરુષનું વિશેષ મહત્વ છે. એટલી હદ સુધી 213 નંબરના પત્રમાં એમણે એ વાત કરી છે. બાકી તો ઠામ ઠામ એમણે એ વાત કરી છે અને એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે સત્પુરુષના ગુણગ્રામમાં ઉજમાળ થવું, અગ્રેસર થવું એ અનંત સંસારના નાશનું કારણ છે અને સત્પુરુષથી વિમુખ થવું, એનો અવર્ણવાદ કરવો એ અનંત સંસાર વધવાનું કારણ છે. આ પણ એક પત્રમાં એમણે લખ્યું છે. આજના દિવસે એમના ગુણાનું વાત કરવા અને એમણે જે કાંઈ પ્રકાશ પાડ્યો આ વિષય ઉપર એમનો અનંત ઉપકાર છે, એનું સ્મરણ કરવું એ આજના દિવસનું આપણે ઉજવણું ગણવું જોઈએ. સત્પુરુષના જન્મદિવસને કેવી રીતે ઉજવવા કે એમના ગુણગ્રામ કરીને. અગિયારમાં પેજમાં એ વાત છે જે એમ જીવન વિશે લખેલું છે એમાં એમના વિશેષ કરીને એમના ગુણગ્રામ જ કરેલા છે. એમાં પરમ નિષ્ફળતા એ એમનો વિશિષ્ટ ગુણ હતો. પરમ એટલે છેલ્લી હદની. કેટલી નિષ્ફળતા હતી? છેલ્લી હદની નિષ્ફળતા હતી. ૧૬૫ના પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે એ પેરેગ્રાફની અંદર કે એ જ્ઞાનની દિન પ્રતિદિન આ આત્માને પણ વિશેષતા થતી જાય છે. એ જ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન. જે આત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ્યું ભાવનાશક, ભાવનો નાશ કરનારું એવું આત્મજ્ઞાન પોતાને જે પ્રગટ્યું છે એ જ્ઞાનની પણ વિશેષતા થતી જાય છે. આત્મજ્ઞાનમાં શું વિશેષતા થતી જાય? કે સ્વરૂપ ગ્રહણ શક્તિ વધતી જાય છે. આત્મજ્ઞાનનું મુખ્ય કાર્ય છે સ્વરૂપ ગ્રહણ શક્તિ. આત્મજ્ઞાન થાય એટલે શાસ્ત્રોના અર્થ આવડે એમ નહીં, પણ સ્વરૂપ ગ્રહણ શક્તિ વધતી જાય છે. એ વિશેષતા છે આત્મજ્ઞાનની. અને એ સ્વરૂપ ગ્રહણ શક્તિ ચરમસીમાએ પહોંચે, બારમા ગુણ સ્થાને, ત્યાર પછી તેરમા ગુણ સ્થાને કેવળ જ્ઞાન ફાટે છે. એટલે વોલ ટાઈપમાં લીધું છે આપણે પેરેગ્રાફમાં. એ જ્ઞાનની દિન પ્રતિદિન આ આત્માને પણ વિશેષતા થતી જાય છે. હું ધારું છું કે કેવળ જ્ઞાન સુધીની મહેનત કરી અલેખે તો નહીં જાય. હવે કેવળ જ્ઞાન સુધીનો જે પુરુષાર્થ કરું છું એ જરૂર સફળ થશે એવી પોતાને ખાતરી પણ આત્મામાંથી થઈ છે. એમનો આત્મા એને સાક્ષી પૂરે છે કે જરૂર મને હવે કેવળ જ્ઞાન અલ્પ સમયમાં થઈ જશે. છતાં પણ પર્યાય દ્રષ્ટિ નહીં હોવાથી એટલી બધી નિષ્ફળતા એમણે દર્શાવી છે કે મને ખબર છે કે મને કેવળ જ્ઞાન અલ્પકાળમાં થવાનું છે તો પણ મોક્ષની આપણને કાંઈ જરૂર નથી. છતાં એ પર્યાય અલ્પકાળમાં થવાની હોવા છતાં પણ મને એને આધાર લેવો, એનું લક્ષ્ય કરવું, એનું અવલંબન લેવું, એવું એ તો સહેજ થવાની છે. એનું જ્ઞાન કર્યું છે બસ. એ રીતે મોક્ષની સુદ્ધા સ્પૃહા નથી પોતાને. એ વાત ઉલ્લેખ 24મા વર્ષે દ્રવી દ્રષ્ટિ પ્રગટ થતાં શરૂ કર્યો છે. દ્રવી દ્રષ્ટિનું જોર અને પરમ નિષ્ફળતાને પ્રદર્શિત કરી છે. બીજું એમની અદભુત વિદેહી દશા હતી. વિદેહી દશા એટલે દેહાતીત દશા, અંતરમાં જ્ઞાનમયપણાને લીધે, જ્ઞાનમય પરિણમન ચાલતું હોવાને લીધે દેહ છે એ બાજુમાં રહેલું એક ખોખું છે. જેમ હીરાને ડાબલી જુદી હોય છે, હીરાને હીરાની ડાબલી જુદી, ભલે મખમલની હોય તો પણ ક્યાં હીરો ને ક્યાં ડાબલી, જ્યાં પાસે ડાબલીની કોઈ કિંમત નથી. પચીસ પચાસ લાખનો ડબ્બી ડિબ્બી ડિબ્બી પચીસ પચાસ લાખની નેકલેસ હોય, તો એ નેકલેસને રાખવાની ડબ્બી 150 રૂપિયાની હોય, ઉછે જ્યાદા નહીં. સામાન્ય તો 10-15 રૂપિયાની આવે છે, પણ બહુ સારી હોય તો 150. શરીર છે એવું તો ચૈતન્ય હીરાકો રખને એક ડબ્બી હૈ, ઉસકા કોઈ મૂલ્ય નહીં, ઉસકા કોઈ મૂલ્ય નહીં હૈ. ગુજરાતીમાં સમજતી હૈ બરાબર? છોટી છોટી બચ્ચી ગુજરાતી માં સમજને લગ ગઈ,
વાંચે
છે ગુજરાતી માં, પડતી ગુજરાતી એટલા શીખ લીધા હે, બસ ગ્રેસમેન્ટ પાવર બઢિયા હે. ક્યાં કહેતે હૈ કે ઉનકી જો દેહાતી દશા થી, દેહ સે ભિન્ન રહેને કી જો દશા થી, બહોત અદ્ભુત થી, સામાન્ય નહીં થી, બહુ અદ્ભુત થી. 176 નંબર કે પત્ર મેં વો લિખતે હૈ કે એક ઓર સે પરમાર્થ માર્ગ ત્વરા સે મેને જલ્દી સે પ્રકાશને કી ઈચ્છા હૈ, આત્મકલ્યાણ કા માર્ગ હૈ, લોગો કો મિલે ઇસ તરહ સે પ્રકાશ, ઉસકો પ્રકાશ મેં લાને કી પ્રભાવના કરને કી ઈચ્છા હોતી હૈ. ઓર એક ઓર સે અલખ લે મેં સમાવિષ્ટ હો જાના એસા ભાવ મેં રહેતા હૈ. અલખ લે મેને ક્યા, અલખ મેને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે લક્ષ્ય ગોચર નહીં હોતા હૈ, ऐसे आत्म स्वरूप को अलग स्वरूप कहने में आता है। आत्मा है वो अलग निरंजन है, मत में कहते ना बाबा लोग अलख निरंजन। अलख मैंने इंद्रिय ज्ञान से लक्ष्य गोचर नहीं हो सके ऐसा जिनका स्वरूप है उसको अलक्ष्य कहते हैं। अलक्ष्य में से अपभ्रंश हुआ अलख निरंजन, मैंने दाग रहित उसकी ले मैंने लाई। मेरा स्वरूप की मुझे इतनी लय लगे कि मैं उसमें समा जाऊं, बाहर निकलूं ही नहीं। ये जो परमार्थ का मार्ग प्रकाशन करने का है उसमें तो उपयोग बाहर जाता है, तो मेरे दो विरुद्ध परिणाम चलते हैं। एक ओर से परमार्थ मार्ग प्रकाशन की इच्छा होती है कि लोगों को आत्म कल्याण का मार्ग मिल जाए तो उसको दर्शाने के लिए मैं समर्थ हूं, तो कई लोगों का कल्याण हो जाएगा। एक और होता है ऐसा भाव रहता है कि मैं मेरे स्वरूप में समा जाऊं, मौन होकर के समाधिस्थ हो
जाऊं।
दोनों को ये चलता है, दोनों को चलता है, दोनों भाव रहता है। लिखते अद्भुत दशा निरंतर रहा करती है। अब्ध हुए हैं हम, तो अब्ध हो गए हैं, अद्भुत दशा रहती है। और अब्ध मैंने हमारे स्वरूप में मस्त हो जाते हैं। अब्ध क्या जाने गुण ही ना, ये गुण गुण न प्रवीणा, अब तू क्या जाने अब तू नट नागर की बारी, क्या जाने ब्राह्मण काजी। आनंद गंजी ने अब्दू शब्द का प्रयोग बहुत किया है। अब्दू मैंने मस्त, अवधूत, अवधूत शब्द बोलते हैं, अब्दू भी बोलते हैं, अवधूत भी बोलते हैं। स्वरूप में मस्त रहने वाले को अब्दू कहते हैं। और 255 पत्र में स्वयं की अंतरंग दशा निम्न शब्दों में प्रकाशित किया है। एक पुराण पुरुष और पुराण पुरुष की प्रेम संपत्ति के बिना हमको कुछ नहीं जमता है। पुराण पुरुष मैंने अपना आत्मा, अनादि से होने के लिए वो पुराणा है, इसलिए पुराणों में इसकी कथा है। पुराण मैंने क्या कि भूतकाल में जो पुराने महात्मा है उनकी कथा लिखना उसको पुराण कहते हैं, उसका चरित्र लिखना उसको पुराण कहते हैं। अंतर्भाई दोनों चरित्र इसमें आता है, जैसे रामचंद्र जी की दोनों कथा आती है, बाहर में क्या हुआ अंदर में क्या हुआ। और सबसे पुराना अपना आत्मा है, ये तो कुछ हजार साल पहले, लाख साल पहले हुए, करोड़ साल पहले हुए, लेकिन सबसे पुराना तो अपना आत्मा है। और चारों अनुयोग में उसकी कथा जा रहा है, उसकी कथा ही है, उसको समझाने की कथा है, इसलिए चारों अनुयोग का कथानायक कोई है तो आत्मा है, इसलिए भी उसको पुराण पुरुष कहने में आता है। तो कहते हैं एक पुराण पुरुष और पुराण पुरुष की प्रेम संपत्ति, हमारे आत्मा के प्रति हमको उतना प्रेम है, उतनी आसक्ति है, उतना लगाव है, उतना बढ़ गया है कि इसके सिवा हमको कहीं गमता ही नहीं, कुछ नहीं गमता।
प्रेम संपत्ति,
हाँ प्रेम संपत्ति, इसका उतना खिंचाव है हमारा, हमको इसके सिवा कुछ नहीं लगता है। वो दिव्य प्रेम है, वो हमको किसी भी पदार्थ में रुचि मात्र नहीं रही, वो प्रेम के कारण हमारी रुचि भी बदल गई है, किसी भी पदार्थ में हमारी रुचि है ही नहीं। कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी हमको ये मिले वो मिले तो ठीक, वो मिले तो ठीक, वो मिले, कुछ भी इच्छा नहीं है। व्यवहार कैसे चलता है इसका भान नहीं है। इतना बड़ा कारोबार का गद्दी पे बैठते थे, मतलब कैसे चलता है हमको तो भान नहीं देता, ऊपरी उपयोग से वो चल जाता था। हाँ, फिर भी ऊपरी उपयोग से ये सब हो जाता था। जगत कौन सी स्थिति में उसका स्मरण नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती, जगत की तो पंचायत ही छोड़ दिया है, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। वो तो स्मरण भी नहीं होता है, विकल्प भी इसका नहीं आता है। कोई शत्रु मित्र में भेदभाव नहीं रहा, सब आत्मा ही आत्मा, हमारा कौन शत्रु हो सकता है। जब कोई शत्रु नहीं तो कोई मित्र भी नहीं है, सब आत्मा ही आत्मा, सबको हम तो देखते हैं। वो भी भगवान आत्मा है, वो अवस्था में भूला हुआ है तो बेचारा दुखी हो जाएगा, उसकी करुणा होने लायक है। बाकी शत्रु है वो बात नहीं है, कोई आत्मा शत्रु हो ही नहीं सकता है। आत्मा तो भगवान आत्मा ही दिखता है, फिर शत्रु कैसे हो सकता है। वो बेचारा भूला है, तो अवस्था में भूला है भगवान। अब लिखते हैं कि हम देहधारी है कि नहीं, ये तो स्मरण में लेते हैं, तब कोशिश से जानने में आता है कि देह भी है हमको। हमारी ज्ञानमयता और हमारी आत्ममयता उतनी बढ़ गई है कि देह का विस्मरण हो जाता है, शरीर का भी विस्मरण हो जाता है। उसका स्मरण कोशिश, स्मरण करने में कोशिश करनी पड़ती है, तब मालूम पड़ता है कि नहीं देह भी है बगल में। कितनी आत्मरमणता 24 साल की उम्र में है, अभी तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ करीब 8 महीना हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ है, या 6.5 महीने का पत्र है, 8-9 महीने में वो दशा है, देह को भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि हम देहधारी हैं, यह तो स्मरण में लेते हैं तब बहुत कोशिश से मालूम पड़ता है। संपत्ति पूर्ण है इसलिए संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है, हमारे गुण संपत्ति परिपूर्ण है हमारे पास, हमको कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। हृदय प्राय शून्य जैसा हो गया है, क्या है जो हमारा संकल्प विकल्प जिसमें चलता है वो तो प्राय बहुत बहुत भाग तो शून्य जैसा हो गया, ज्यादा विकल्प चलता नहीं कोई विषय
तो में।
पांच इंद्रिय शून्य रूप से प्रवर्तने जैसे हो गई है, उसका भी कोई व्यापार चलता नहीं जैसे समझ लो, ऐसे ही हो रही है। नए प्रमाण आदि आदि शास्त्र के भेद हैं वो स्मरण में भी नहीं आते, नए प्रमाण का बहुत सूक्ष्म ज्ञान था, कौन सा नए कौन से नए पे ले जाना कि जिससे आत्म कल्याण हो जाए, वो सभी नए का ज्ञान बहुत था। अच्छा, वो 10 लिखे एवं भूत नहीं वगैरह 10 बात लिखी है उन्होंने, जगह कोई बताता है कि बहुत सूक्ष्म ज्ञान था, स्मरण में भी नहीं रहता है, इतना विकल्प चलता नहीं, तत्व ज्ञान के विषय में भी ज्यादा विकल्प नहीं चलता। एक अखंड अभेद अपना जो चैतन्य मूर्ति आत्मा है उसमें परिणाम घूमते हैं, उसमें ही परिणाम लगे रहते हैं। ऐसी दशा बहुत तीव्र दशा थी, कुछ पढ़ने में भी चित्त नहीं रहता, कुछ पढ़ने में भी चित्त नहीं रहता है, खाने की पीने की बैठने की सोने की चलने की और बोलने की जो वृत्तियां है वो ऊपरी ऊपरी अपनी इच्छा के अनुकूल सहज सहज वर्तती है, हम तो ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें रस नहीं है, तो ध्यान देने योग्य रही नहीं वो, उनको ये सब वृत्ति अल्प रस वाली वृत्ति है, हम उपेक्षा कर देते हैं इसकी। स्वरूप के बाहर निकलने की हमारी वृत्ति नहीं रहती, तो बाहर की वृत्ति पर ध्यान क्या दिया। पुतानी इच्छा प्रमाण है, तो सहज सहज थोड़ी थोड़ी होती है, जितनी मर्यादा है उसकी मर्यादा में वो तो शांत हो जाएगी, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत, वो दुर्लक्ष हो गया है हमारा, इसके प्रति भी दुर्लक्ष हो गया है। कोई जरूरी नहीं, आदि वचनों से अद्भुत विदेही दशा को प्रकाशित किया है, पुनः चित्त की आत्माकार स्थिति का उल्लेख 398 पत्र में दिखने में आता है उनके, कि आत्माकार स्थिति हो जाने से चित्त बहुत करके एक अंश भी उपाधि योग भेदन करने के योग्य नहीं रहा, हमारी आत्माकार स्थिति होने से। 398 पत्र कौन से साल में है, 25वां वर्ष होगा। बहुत आत्माकार स्थिति थी जवाती, हम तो लिखे थे 25वां वर्ष है, आत्माकार स्थिति थी जवाती। चित्त मैंने अंतर परिणाम, हमारा परिणाम एक अंश भी उपाधि करें ऐसा हम योग्य नहीं रहे, इसके लायक नहीं रहे, उपाधि करने के लायक हम नहीं रहे। जैसे कीड़ी है वो कोई बोझा नहीं ढो सकती, चींटी कोई बोझा ढो सकती है, वो छोटी है ना, कहाँ से ढो सकती। बैल है वो बोझा ढो सकता है। चित्त की स्थिति चींटी जैसी थी और बोझा पड़ा था बैल जैसा, ये एक प्रारब्ध की विषमता थी, प्रारब्ध की विषमता थी। अगर कोई इस विश्व का संचालक ईश्वर होता तो उसको डंडा मारना पड़ता है कि तुम ऐसे महात्माओं के ऊपर इतना बोझा क्यों डालते हो, जिसकी चित्त की स्थिति एक अंश भी उपाधि योग्य करने जैसी नहीं रही, उसके ऊपर इतना बोझा तुमने डाल दिया, बेरहम है कैसे बेरहम है, ऐसे निर्दय हो गए भगवान, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन काश ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं, करे भी क्या। हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं समझते क्या। कि उनकी स्थिति बाह्य कार्य करने में उतनी कमजोर हो गई थी कि एक अंश भी उपाधि उठाना वो लायक नहीं रहे थे, उनको लाखों का कारोबार का बोझा उठाना पड़ता था प्रारब्ध के कारण से। तो हमने ये बोला कि अगर कोई विश्व में ईश्वर तो नहीं है कि इस प्रकार का संचालन करे, विपरीत संचालन करे, कि महात्माओं के ऊपर भी बोझा डाल दें। लेकिन अगर होता तो हम उसको डंडा मारते कि तुम निर्दय हो, बेरहम हो, जो चींटी भी बोझा नहीं धो सकती, तो बैल भी नहीं धो सकता, उसका बोझा चींटी के ऊपर डाल दिया तुमने, ये क्या कर रहे हो। आप गुजराती माने कीड़ी ने कोस नो डाम, कोस समझते हैं वो जमीन खोदने के लिए जो आता है लोहे का, उसको कोस बोलते हैं, गड्ढा खोदने के लिए नहीं आता लोहे का, ये मार मार करके इतना लंबा होता है, छेनी जैसा, लंबी छेनी जैसा, उसको हमारे यहाँ कोस बोलते हैं। आप हिंदी में क्या बोलते भाई? हैं डाम देते ना गरम लोहे का, क्या बोलते डाम को, क्या बोलते हैं डाम ही बोलते हैं, किसी को सिगरेट का देते हैं या कोई को चिपिया, हाँ चिमटा को गरम करके किसी को लगा दे, डाम बोलते हैं ना, डाक बोलते हैं मेरे लोग हिंदी भाषी को, आपके पास शब्द नहीं है। तो चींटी होती है वो तो क्या है कि कोई घोड़ा हो, बैल हो, उनको तो कोस का कोस गरम करके उसको डाम देवे तो ठीक है, इसका बॉडी इतना बड़ा है तो सहन भी कर लेगा। लेकिन चींटी को कोस का डाम देवे तो बेचारे का क्या हो जाए, दे ही नहीं सकते। जैसे कोई कोई बलवान हो उसको मार मार मारे वो सहन करेगा, लेकिन कोई बीमार हो, अशक्त हो, उसको मार मारे तो क्या हो जाए। तो हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि भाई इसको मत मारो, कीड़ी ने कोस नो डाम छाया था, अथवा हाँ ना, अथवा कोई मानो के कोई दरिद्र है और कोर्ट में उसको बोले कि तुमको इतना लाख रुपए का दंड देते हैं, तो क्या बोलेगा कि साहब मेरे पास तो हजार भी नहीं है, लाख का दंड देते हो, ये तो चींटी को कोस का दाम देने की बात है, हम कहाँ से बर्दाश्त कर पाएंगे। ऐसे कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति कृपालु देव के चित्त की थी, एक अंश भी उपाधि बर्दाश्त करने लायक उनकी परिणाम की स्थिति नहीं थी, उनको बड़ा कारोबार का बोझा उठाना पड़ता था। वो तो लिखते हैं, वो तो लिख रहे हैं कि ये हमारी हालत है। चिबड़ा में तो इमीजी बात है, तो उनके थोड़ो गुनो करोने वधारे सजा आपी बात है। दूसरी बाजू की ताकत थी। तीसरा गुण है अपूर्व वितरागता। कैसे वितरागता? अपूर्व वितरागता। वो 313 नंबर के पत्र में लिखते हैं, सब अपनी दशा का उल्लेख किया है, जो जितना जितने भी गुण लिए हैं वो गुण खुद ने भी अपने हाथों से प्रकाशित किए हैं, ऐसे ऐसे हमारी दशा है, ऐसे कोई फैटरिंग नहीं किया है, मुझे गुण के विषय में जो लिखा है उसका आधार भी मिलता है, कोई झूठी प्रशंसा नहीं किया है। क्या कहते हैं अपन, अतिशयोक्ति भी नहीं किया है कि भाई गुण नहीं है और बता दो है, कृत्रिमता भी नहीं है। और वो जो करते हैं ना, वो बड़े बड़े राजा को मक्खन लगाते हैं, खुशामत, खोटी प्रशंसा को खुशामत कहते हैं। खुशामत खोर लोग होते हैं, खुशामत करते रहते हैं सेठ लोगों की, राजा लोगों की। ये खुशामत भी नहीं किया है पात्र जी के सामने, सुभाग भाई के सामने वो अपना अंतर खोलते थे। तो वो 313 नंबर के पत्र में लिखते हैं, ऐसा कोई ऐसा ही प्रकार का उदय है कि अपूर्व वितरागता होने पर भी व्यापार संबंधी कुछ एक प्रवर्तन कर सकते हैं। के सामने वो अपना अंतर खोलते थे। तो वो 313 नंबर के पत्र में लिखते हैं, ऐसा कोई ऐसा ही प्रकार का उदय है कि अपूर्व वितरागता होने पर भी व्यापार संबंधी कुछ एक प्रवर्तन कर सकते हैं। बहुत वितरागता होने के बावजूद भी व्यापार कर सकते हैं, ऐसा कोई उदय है। और दूसरे भी खाने पीने आदि का प्रवर्तन बहुत कोशिश से कर सकते हैं, मांड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। खाने पीने में मुश्किल ही पड़ती है, बोझा लगता है। मन कहीं भी विराम नहीं पाता, मन विराम पाता यानी कहीं भी स्थिर नहीं होता। ये हमको पसंद है, वो बात कहीं भी नहीं है, हमारे मन में वो बात कहीं भी नहीं है। चित्त को ज्यादा का संग नहीं है, बहुत पदार्थों का, बहुत व्यक्तियों का संग चित्त को नहीं है। आत्मा आत्मभाव में वर्तता है, हमारी आत्मा हमारे आत्मभाव में रहता है। समय समय प्रति समय अनंत गुण विशिष्ट आत्मभाव बढ़ता है, वृद्धिगत होता है, ऐसी हमारी दशा रहती ही है। प्रति समय अनंत गुण विशिष्ट है, अपना परिणाम बताया है 313 नंबर के पत्र में। ये भी 24 साल की उम्र है, 313 में 24 साल की उम्र है, 25 साल हो गया। मोक्ष मार्ग में प्रति समय अनंत गुण विशिष्ट आत्मभाव वर्धमान था। ते सम्यक्त्वनो प्रभाव से और पत्रांक 317 में लिखते हैं कि चित्त बहुत करके वन में रहता है, देह घर में रहता है और चित्त वन में रहता है। जिस प्रकार की मुनियों की दशा जंगल में जाकर हो जाती है, वो दशा हमारी घर में हो गई है। लिखते हैं क्या वितरागता हुई है, चित बहुत करके मन में रहता है और आत्म स्वरूप तो मुक्त स्वरूप लगता है, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो ध्रुव असंग चैतन्य है, वो तो किसी का संग करता ही नहीं। वृत्तियां थोड़ा बहुत संग कर लेती है, आत्मा तो भिन्न ही भिन्न लगता है, मालूम पड़ता है, वो तो भिन्न ही रहता है, वो तो कुटस्थ है ध्रुव में। वितरागता विशेष है, वितरागपणा मैंने वितरागता विशेष है। जगत से बहुत उदास हो गए हैं, जगत से बहुत उदास हो गए हैं और लोगों से कंटाला आ गया है, वस्ती मैंने समाज से कंटाला आ गया, समाज में मिक्स होने का हमको भाव रहता आदि। ये कृपालु देव की वितरागता का सैंपल है, ये तो सैंपल है, है? माल तो रात दिन जो वो भोगते थे, वेदन करते थे, अलौकिक बात होती है, वचन गोचर है, तो वचन गोचर थोड़ा थोड़ा सैंपल कहीं कहीं रख दिया है, अच्छा हुआ रख दिया है, वरना मालूम भी किसी को नहीं पड़ता है। हाँ रखा है कहीं कहीं, देखो दो तीन पत्र का उल्लेख किया। और अलौकिक स्वरूप जागृति थी, वासुदेव को स्वरूप के भीतर में जागृति अलौकिक थी। गृहस्थ दशा और अनेक प्रकार के व्यावसायिक प्रसंगों की भीड़ में भी उनकी अलौकिक स्वरूप जागृति स्पष्ट रूप से उभर करके बाहर आती है, ऐसी स्वरूप जागृति थी। उस जागृति के वशात स्वयं के सूक्ष्म परिणामों का अवलोकन होकर के उस विषय पर उन्होंने अनेक पत्रों में असाधारण रूप से उसकी अभिव्यक्ति की है। उसका भी सैंपल है, उन्होंने पत्रांक 788 में किया है कि असारभूत व्यवहार सारभूत प्रयोजन की तरह करने का उदय वर्तन्ते पर भी जो पुरुष उस उदय से क्षोभ नहीं पाम करके सहज भाव से स्वधर्म में निश्चलपणे रहा है रहते हैं, उस पुरुषों का भीष्म व्रत का वारंवार हम स्मरण करते हैं। दूसरों जो पुरुषार्थवंत महात्मा है उनको स्मरण में लेकर के अपना पुरुषार्थ बनाते हैं, तो कि अनेक महापुरुषों को भी अनेक प्रकार का उदय आया है, जैसे रामचंद्र जी थे, भरत बाहुबली थे, और ऐसे पार्श्वनाथ भगवान थे, तो बहुत से महात्मा हैं। पांच पांडव थे, वो भी पांचों ज्ञानी थे, पांचों पांडव पांचों ज्ञानी थे, पांच भाई में पांच सम्यक दृष्टि। देखो क्या जमाना था है? नेमनाथ भगवान का तो काल है, कितने में तीर्थंकर है नेमनाथ भगवान? तेईसवा पार्श्वनाथ, इक्कीसवा नमिनाथ, नमिनाथ विष्णु सोम सोम मुनि सुव्रत मुनि सुव्रत, बाईसवा नेमनाथ भगवान के काल में वो पांच पांडव थे, श्री कृष्ण थे ना, श्री कृष्ण थे भाई, पांच भाई में पांचों सम्यक दृष्टि और तीन चरम शरीरी, पांच सम्यक दृष्टि और तीन चरम शरीरी। देखो क्या जमाना, एक घर में पांच भाई पैदा हुए, पांचों सम्यक दृष्टि और तीन चरम शरीरी।
स्त्रियां भी सफल दृष्टि
हाँ होती है,
पवार होते पूरे पवार सम्यक दृष्टि होते
हाँ होते। तो कैसे हैं कि उन लोगों को भी कुछ व्यवहार निभाने का होता था, वो तो असारभूत है, उसमें कोई दम नहीं है। असारभूत व्यवहार निभाते थे जैसे कोई सारभूत व्यवहार निभाना पड़ता हो, उस तरह से निभाते थे। राजपाट चलाते थे, उस तरह से वर्तन करने के बावजूद भी वो उदय में क्षोभ नहीं पाते थे, मैंने विचलित नहीं होते थे, क्षुब्ध नहीं होते थे, हलचल पैदा नहीं होते थे, इतनी ताकत रखते थे, आपको सार्थ रखते थे। उदय उदय के घर में होता है, हम हमारा काम करते हैं बराबर, क्षोभ नहीं
हाँ
शोभ नहीं पा करके सहज भाव से स्वधर्म में निश्चल रहते थे। ऐसे पुरुषों का भीष्म व्रत, ऐसे पुरुषों का प्रचंड पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषों का भीष्म मैंने ताकत वाला, वो भीष्म पितामह थे ना, वो मान से ही आपे सोए थे कई साल तक। हाँ मान सया मैंने जो बाण है तीर की गद्दी बना लिया है अपने को, तो थोड़ा एक सुई भी हुई तो छुपेगी, उनके सैकड़ों बाणों को ऐसे रख दिया ऊपर और इसके पर सो गए, खून बहने लगे तो भले ही बहने लगे, सोते रहे हाँ कई साल तक, उतनी सहन शक्ति थी, सहन करने का पुरुषार्थ उतना था। उसी पर से ये कहावत होगी, कोई कठिन पुरुषार्थ करता है उसको भीष्म व्रत बोलते हैं। जैसे कि उपवास किया हो तो लोग भोजन से दूर रहते हैं, एक दिन दो दिन पांच पंद्रह दिन एक दिन महीना भर का उपवास कर लिया हो, भोजन से दूर रहते हैं, लेकिन भोजन की थालियां के बीच में पंद्रह पंद्रह दिन महीने महीने भर उसकी बास आती हो, फिर भी खाने की वृत्ति नहीं लगे, उसको भीष्म व्रत कहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ मुनिराज होते हैं तो ऐसे नहीं होते हैं, वो इसलिए प्रचंड पुरुषार्थ कर सकते हैं कि गृहस्थी में पंचेंद्रिय के विषय की उपस्थिति में वो निरस हो जाते हैं, पहले अपना पुरुषार्थ से ताकत तो वहां जमा ली है फिर मुनिराज होते हैं, अंदर में पहले मुनिराज होते हैं फिर बाहर में मुनिराज होते हैं, तो पांचों इंद्रियों के विषय तो उनके पास प्राप्त है जैसे भरत चक्रवर्ती थे, પાંચ ઇન્દ્રિય કે વિષય કે કોઈ કમી ના નહીં છે, બિલકુલ કમી ના નહીં છે, ફિર ભી અંદર મેં મને પહેલે હો ગયા થે તો બહાર મેં મને હોને મેં દેર નહીં લગી, એક અંગૂઠી નીકળી કે છોડા સબ
કેવલ જ્ઞાન લેતા વાર નથી
और केवल ज्ञान देने में देर नहीं लगे। ऐसे उनके गृहस्थी में इसका भीष्म व्रत देख उन्हीं को बारंबार स्मरण करते हैं, हम भी गृहस्थ में है ना तो इनके इन लोगों का पुरुषार्थ को हम स्मरण में लेते हैं, देखो महापुरुषों ने आगे आगे कैसे कैसे पुरुषार्थ किया है।
महापुरुष ने अवलंबन बलवत्तरता
उनके क्या खाया क्या नहीं खाया कोई भान रहती नहीं है। जागृति का विषय लिया है, पुरुषार्थ का विषय तो नीचे और दिया है। कृपालु देव के जीवन के परिणमन की यह कोई असामान्य विलक्षणता थी कि जो परिणति जो जीवन उनके प्रबल पुरुषार्थ को प्रकाशित करता है। 10 वर्ष के साधक जीवन में उन्होंने अदम्य पुरुषार्थ करके सिर्फ एक भाव के कर्म बाकी रखे, सबको जला दिया, पुरुषार्थ की अग्नि में सभी कर्मों को जला करके एक ही भाव बाकी रहे ऐसी स्थिति कर दी। पुरुषार्थ तो उसी भाव में सबको खत्म करने का था तो थोड़ा बाकी रह गया, पुरुषार्थ एक भाव को बाकी रखने वाला नहीं था कि वैश्य मैंने बनिया ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय अने शूद्र चार मतलब कोई विभाग कर्या छे ने वैश्य એટલે માન્ય हम वैश्य वेश में है, वेश तो हमारा वैश्य का है और भीतर में तो मुनि जैसे निग्रंथ भाव में वाले हैं। इस प्रकार के बसते हुए रहते हुए कोटि कोटि विचार होता है, कई प्रकार के विचार आ जाते हैं। निग्रंथ भाव से वर्तने वाला हमारा चित्त इस व्यवहार में यथार्थ नहीं वर्त सके, ये भी सत्य है, किसी के साथ समुचित व्यवहार नहीं भी हो पाएगा। हम जाते हैं ज्यादा बोलते नहीं हैं, हम मिलते हैं तो ज्यादा मिक्स नहीं होते हैं, और इतने हम सगे हैं फिर भी हम व्यवहार कर लेते हैं, वो तो हमारे प्रति उतना व्यवहार भी नहीं करते। तो यथार्थ रूप से व्यवहार में नहीं प्रवर्त सके हमारा चित्त, क्योंकि निग्रंथ भाव वर्तता है, संबंध तो हमने काट दिया है अंदर से, तो सबका संबंध कट ऑफ कर दिया है, तो हमारा व्यवहार भी समुचित नहीं रहे। हम स्वीकार करते हैं वो बात सत्य है, कोई बोलेगा हमारे व्यवहार के विषय में देखो इसका व्यवहार का ठिकाना नहीं है, व्यवहार तो बराबर होना चाहिए ना, व्यवहार प्रधानता वाले ये बोलेंगे कि व्यवहार तो ठीक होना चाहिए ना, ग्रस्तपना तो छोड़ा नहीं, ग्रस्त में तो रहे तो ग्रस्त उचित तो व्यवहार तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारा चित्त है निग्रंथ भाव से वर्तता है तो यथार्थ व्यवहार में नहीं प्रवर्त सके वो भी सत्य है।
ऐसी दशा में
ताकत रखते थे इतना ऊपरी भाव से ये कर देते थे, ये पण सत्य छे। जे माटे ऐसे दो प्रकार की एक स्थिति करके यानी कोऑर्डिनेशन कर सकते नहीं, क्योंकि प्रथम प्रकारे वर्तता निर्ग्रंथ भाव थी उदास रहू पड़े तो ज यथार्थ व्यवहार साचवी शकाय एम छे। प्रथम प्रकारे वर्तता एटले व्यवहार में जो हमारी विपराकता नहीं रहे यथार्थता नहीं रहेगी, व्यवहार में भी हमको यथार्थता नहीं मिलेगी। वो तो दूसरे सब करते हैं लौकिक जन, तो यह व्यवहार के त्याग किए बिना और अत्यंत अल्प किए बिना निग्रहता यथार्थ रहे नहीं, व्यवहार को तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा। इसके बिना अंदर का भाव चले, हम व्यवहार में भी रस ले गए, आत्मभाव में भी रस ले गए, वो बात तो बनने वाली।
अंदर से निर्ग्रंथता प्रथम आ जाएगी।
उदय रूप होवा थी व्यवहार त्यागो जतो नथी, उदय होने से वो छोड़ भी नहीं सकते, उदय छोड़ता नहीं। यह सर्व विभाव योग मटे बिना हमारा चित्त दूसरा किसी भी उपाय से संतुष्ट पामे, संतुष्ट हो जाए ऐसा लगता नहीं। ये सब एक दफे हम छोड़ देंगे, इसके सिवा हमको संतोष होगा। फिलहाल नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन समुचित व्यवहार में आ नहीं सकेंगे, कभी पूरा छोड़ देंगे, यही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला। उस विभाव रूप से वर्तता आत्मभाव बहुत परीक्षण किया है, उस विभाव पने वर्त तो आत्मभाव, विभाव में जो आत्मवृत्ति होती है मिथ्या दृष्टि को, वो तो बहुत क्षीण कर दिया है। आत्मभाव से तो वर्तते नहीं है, और अब भी वही परिणति वर्तती है, और संपूर्ण विभाव योग निवृत्त किए बिना, मैंने नाश किए बिना चित्त मैंने आत्मा का पुरुषार्थ शांत हो गए शांति को प्राप्त करे ऐसा लगता नहीं है। तो खत्म कर देंगे पूरा पुरुषार्थ में, पूरा विभाव को खत्म कर देंगे। इसके पहला हम थंबेंगे, विराम पाएंगे नहीं। और यही पुरुषार्थ का उल्लेख 951 पत्र के वचनामृत में आखिर का पत्र है, उसमें घनी त्वरा थी प्रवास पूरा करवानो हतो, क्या बच्चे सहारा नो रण संप्राप्त थयो। मैंने इस भाव में ही सब खत्म करने का विचार था, और बीच में सफर करते करते रेगिस्तान आ गया, और वो भी विश्व का बड़ा रेगिस्तान आ गया, सहारा कारण सहारा का रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा गिना जाता है। माथे बोझो घनो रहो हो तो, पूर्व कर्म का बोझा बहुत था, बैलेंस था। वो आत्मवीर्य करीने जो तीव्र पुरुषार्थ करी अल्पकाल में वेदी लेवाई तेवी प्रघटना, मैंने योजना ऐसी योजना बनाई थी इसी भाव में उसको खत्म करे, परंतु पैर ने निकाचित उदयमान था ग्रहण कर लिया, पैर थक गया, मैंने पुरुषार्थ में थोड़ी कमजोरी रह गई, जो वस्तु की स्थिति है वो अन्यथा नहीं होती, इस काल में मुक्ति नहीं होती, वो तो दूसरा होने वाला नहीं। हमारी भावना तो इस काल में भी इस वस्तु स्थिति का उल्लंघन करने की थी, लेकिन आखिर में तो जो वस्तु स्थिति हुई रहती है, ऐसी भावना भी तीर्थंकरों के भी सफल नहीं हुई, हमारी कहाँ से हुई। वो भी सारे जगत को सन्मार्ग में ले जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं पाया, क्यों, तो वस्तु स्थिति नहीं है। भावना तो भावना के स्थान में हमेशा हमेशा काम करती है, वही बात उन्होंने अपने पुरुषार्थ के विषय में लिखा।
सुख धारा